శ్రీ శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద్ భక్తి విదాన్ సంశల ప్రభుపాదికి అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి నమస్కార్ శ్రీదాస్ ఠాకూర్కి నితాయి గో హరి ప్రేమానందే హరి గో జయ సమేత భక్తి బృందకి జయ శ్రీ గురు గౌరాంగికి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నిష్ఠికీ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వత దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పశ్చాత్ దేశ తారిణే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త బృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవతం కీ శీల ప్రభుపాద్ కీ. తో ఆ శ్రీమద్ భాగవతం స్కంధ 9 అధ్యాయ 19 శ్లోక సంఖ్య 17. ఇస్ అధ్యాయ కా శీర్షక్ హై రాజా యాతి కో ముక్తి లాభ్. 17 హి హై నా. మాత్రా శస్త్రా దుహిత్రా నా వివిక్త ఆసనో నా అవివిక్త ఆసన భవేత్ బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామ విద్వాంసం అపి కర్షతి. మాత్రా శస్త్రా దుహిత్రా వా నా వివిక్త ఆసనో భవేత్ బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామ విద్వాంసమపి కర్షతి. మాత్రా శస్త్రా దుహిత్రా వా నా వివిక్త ఆసనో భవేత్ బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామ విద్వాంసమపి కర్షతి. మాత్రా శస్త్రా దుహిత్రా వా నా వివిక్త ఆసనో భవేత్ బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామ విద్వాంసమపి కర్షతి.
Ah
क्यों रुक गए थे? वोल्टेज रुक गया था, वोल्टेज सप्लाई नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, अब बोलिए। कौन बोल रहे थे? और पढ़िए, और कोई माता जी? शब्दार मात्रा माता के साथ, शस्त्रा बहन के साथ, दुहित्रा पुत्री के साथ, वा अथवा न नहीं, अविवेक्त आसन, ये कहीं आसन पर सट कर बैठे, भवेत हो बलवान अत्यंत प्रबल, इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समूह, विद्वांसम अत्यंत विद्वान व्यक्ति को, अपि भी कर्षति उत्तेजित करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी माता बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। अब दोहराइए, मनुष्य को चाहिए वो अपनी माता बहन या पुत्री के साथ ये कहीं आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। तात्पर्य, स्त्रियों के साथ बर्ताव करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतया कोई अपनी माता बहन या पुत्री के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बढ़ता है तो आकृष्ट हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जा सकता है, यदि कोई सभ्य जीवन में समुन्नत नहीं है तो आकृष्ट हो सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान भी चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों न हो, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की वस्तु उसकी माता बहन या पुत्री तक भी हो सकती है। अतएव स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के बाद अत्यंत कठोर थे। उनके पास कोई भी स्त्री प्रणाम करने के लिए नहीं जा पाती थी। यहाँ पर भी यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरु पत्नी को भी यदि वह युवती हो तो देखना मना है। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरु पत्नी को भी यदि वह युवती हो तो देखना मना है। कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती है, जिस तरह कि वह अपने पुत्र से ले सकती है। किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो तो ब्रह्मचारी को उसकी सेवा करना वर्जित है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, विशेष करके जो आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचारी संन्यास का व्रत धारण किए हैं उनके लिए विशेष ये श्लोक महत्व रखता है। से आम लोगों के लिए भी एक शिक्षा है, एक चेतावनी है। जैसे रेलवे अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो वहाँ चेतावनी लिखा रहता है कि लाइन रेलवे पटरी क्रॉस करते समय दुर्घटना हो सकती है। बल्कि अब ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं और अनाउंस भी होता है कि कोई भी रेलवे लाइन न क्रॉस करे, पुल का उपयोग करे, पादचारी पुल, पैदल चलने वाला जो पुल है उसका उपयोग करे, प्राय अनाउंस होता है रेलवे स्टेशन में। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती भी हैं कि जो लोग रेल लाइन क्रॉस करते हैं तो कभी कभी द्रुत गति से आने वाली ट्रेन उसको काटकर निकल जाती है, पर ऐसा होता है लोकल ट्रेन में भी, मुंबई में भी। तो चेतावनी लिखा रहता है कि आप रेल लाइन क्रॉस न करें। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी एक चेतावनी है, विशेष करके ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए। जैसे जहाँ भी इलेक्ट्रिक के हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वहाँ लिखा रहता है खतरा लिखा रहता है ना। जो भी रेलवे का भी बहुत हाई वोल्टेज तार होता है लिखा रहता है कि ऊपर हाई वोल्टेज तार है, से संपर्क में ना जाए, अगर थोड़ा भी संपर्क में आएंगे तो खींच लेता है, दूरी से ही खींच लेता है, इतना हाई वोल्टेज होता है। या ट्रांसफार्मर के यहाँ भी लिखा रहता है, बल्कि उसके चारों तरफ बाउंड्री लगाया जाता है कि कोई पशु मनुष्य यदि संपर्क में ना आए, लिखा रहता है डेंजर, सावधान, खतरा है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर पकड़ ले बहुत लोग जानबूझकर भी पकड़ते हैं, कुछ लोग असावधानी में संपर्क में आ जाते हैं। तो जो जानबूझकर पकड़ने वाले तो मरने के लिए ही पकड़ते हैं, लेकिन कभी असावधानी हटी दुर्घटना घटी, कभी आदमी सावधानी नहीं बरता तो उसके चपेट में आ जाता है। तो यहाँ पर भी ये हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज क्या है, बलवान इंद्रिय ग्राम, जो इंद्रियों का जो विषय है बहुत हाई वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक वायर से भी कई गुना ज्यादा। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम अपिकर्षति, यहाँ पर देखिए कह करके कहा कि विद्वांसम अपिकर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को भी, बहुत तत्व ज्ञानी है, बहुत आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत प्रगति कर लिए हैं, उनको भी कर्षति माने खींच लेता है। जो इंद्रिय समूह क्या है, जैसे शिश्न है, उदर है, जिह्वा है, घ्राणेन्द्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, चक्षुन्द्रिय है, ये सब इंद्रिय हैं, और इंद्रियों का जो विषय है, जैसे जिह्वा का विषय, जिह्वा का क्या विषय है? स्वाद लेना, रस लेना। जिह्वा हमेशा स्वाद के लिए कहाँ सुपर टेस्ट हो, खूब स्वादिष्ट वस्तु कहाँ, कौन सा, लोग विज्ञापन में भी पढ़ते हैं कौन सा भोजनालय में बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है, लोग चल कर जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत स्वादिष्ट कहाँ भोजन मिलता है, लोग इंदौर से मुंबई भी आते हैं और खा करके फिर प्लेन में जाते हैं। एक बार बिरला कंपनी के मैनेजर थे तो हम लोग उनके पास गए थे, तो बोले कि एक बिरला परिवार में एक व्यक्ति थे तो इंदौर से शराब पीने के लिए प्लेन से मुंबई आते थे और शराब पीकर फिर प्लेन से इंदौर जाते थे। तो स्वाद के लिए बलवान इंद्रिय ग्राम, जो इंद्रियों का जो विषय है, रसना का विषय है रस लेना, तो जीव को रसना बोलते हैं। रसना जो है हमेशा रस के लिए, खाने के लिए। जिह्वारे लालच्य वश इत उत धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वा के वशीभूत जब हम लोग हो जाते हैं तो इधर उधर खाने के लिए इत उत धाय, इधर उधर आदमी दौड़ता है। शिष्ण उदर परायण, शिष्ण उदर, जिह्वा के समानांतर जो है, क्या है जिह्वा के समानांतर में? उदर है और शिष्ण है, जिह्वा है, उदर है और जननेन्द्रिय है, उपस्थ भी बोलते हैं। वाचो बेगम मनुष्य क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम उदरो उपस्थ बेगम, तो जिह्वा बेगम और उदर बेग और उपस्थ, तीन जो है बड़ा खतरनाक है। जिह्वा का बेग, उदर का बेग और उपस्थ का बेग। तो जिह्वा के चलते हम उदर और शिष्ण परायण हो जाते हैं। शिष्ण उदर परायण, शिष्ण उदर को पालना, उसकी पुष्टि करना, उसका पोषण करना, तो उसके पोषण में अगर हम लग जाते हैं तो कृष्ण परायण नहीं हो सकते हैं। शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं, कृष्ण परायण होना है तो इसको वश में करना है, रसनेन्द्रिय को, उदर को और जननेन्द्रिय को, उसको वश में करना है। जीव को जो वश में कर लेता है तो उदर को, शिष्ण को वश में कर सकता है, माने खाने पर संयम करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब कहाँ खाना है। बहुत ऐसे सामान्य जीवन में हम लोग कहीं भी खा लेते थे, रोड पर भी, जहाँ मक्खी है, मच्छर है, धूल भी पड़ रहा है, कुछ भी है लोग खा लेते हैं, रोड पर भी लोग खाते हैं ना, पाव भाजी है, बड़ा पाव, तो वहाँ कहाँ सफाई होता है, में धूल इत्यादि आता है, मच्छर मक्खी आते हैं, बनाने वाले भी सही नहीं होते हैं। तो आप लोग मुंबई में देखेंगे, ऑफिस जब छूटता है तो लोग रोड पर आकर खाते हैं, बड़ा पाव खाते हैं, खुले में, वहाँ पर मक्खी भी जाती है, धूल भी उस पर गिरता है। तो भोज खाना जो है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको जो संयमित कर लेता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने लगता है। इसलिए हम जो प्रसाद का मंत्र बोलते हैं ना, कि सही अनमृत पाओ आराधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डांको श्री चैतन्य निताई, सही अनमृत पाओ, भगवान को जो भोग लग जाता है वो पाना है और भगवान का नाम जप करना है। जिह्वा का दो काम है, बाकी हर इंद्रिय का एक एक काम है। जो इंद्रियां उनका एक काम, लेकिन जिह्वा का दो काम है। जिह्वा का एक खाना और बोलना। तो खाना है तो क्या खाना है, तो जो भगवान को भोग अर्पित हो, सही अन्नमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। नहीं तो जिह्वा को वश में करना बड़ा कठिन है। तार मध्य जिह्वा यति, सबके बीच में जिह्वा है, नाक है, कान है, आंख है, बीच में जिह्वा है। तार मध्य जिह्वा यति लोभमय सुदूरमति, ये लोभमय है, बहुत लालची है। यही होता है ना रति रमन प्रभु, बंगाली लोभमय ना, बहुत लोभमय, बहुत लालची है। आ दुष्टमति सुदूरमति मैंने दुष्टमति ना, बड़ा दुष्ट बुद्धि वाली है जिह्वा। लोभमय सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे, इसको जितना बड़ा कठिन है जिह्वा को। ताके जेता कठिन संसारे, जिह्वा बहुत लचीली है, इसमें हड्डी भी नहीं है कि पकड़ कर तोड़ देंगे, बहुत लचीलापन है, तोड़ भी नहीं सकते हैं, मरोड़ेंगे तो फिसल जाएगी। जिह्वा को जितना बड़ा कठिन है, तार मध्य जिह्वाति लोभमय सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे। लेकिन कैसे जीतेंगे, तो सही अनमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्यताई। तो जिह्वा को जो बस में कर लेता है तो शिष्य और उदर को बस में कर लेता है, तो आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति करता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए खाने पर हमें विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य को चाहिए, सावधान किया गया है कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविकता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। इंद्रियों का जो विषय है, बलवान इंद्रियां हैं, बहुत बलवान हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को भी पराजित कर देती हैं, बड़े बड़े महारथी भी पराजित हो जाते हैं। इंद्रियों, इंद्रिय का जो विषय है, इतना आकर्षण है उसमें कि बड़े बड़े विद्वानों को भी पराजित कर देती है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, इसलिए माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ना विविक्त, विविक्त माने अलग होता है, ना माने नहीं, विविक्त होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहता है ना विविक्त, ना विविक्त या अविविक्त, अविविक्त माने कहीं आसन पर नहीं बैठना, विविक्त होकर बैठना, अलग बैठना चाहिए। ऐसे माँ के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ ऐसा विकार नहीं होता है। माँ का बहुत ऊंचा दर्जा है, माँ के प्रति, बहन के प्रति बड़ा आदर का भाव होता है, इस तरह की भावना नहीं आती है। लेकिन फिर भी कहा गया है तो भी अलग बैठना चाहिए, एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, सावधान किया गया कि हो सकता है कि इंद्रियां बहुत बलवान है, उसका विषय बहुत बलवान है। से आग के संपर्क में कोई कितना भी बलवान आदमी आ जाए तो उसको जला देती है, आग के संपर्क में ईंधन आता है तो उसको जला देती है, इसलिए दूर रहना चाहिए। इसी पर जैमिनी को संदेह हो गया था। जैमिनी कहे कि नहीं, विद्वानों को, विद्वान को माया नहीं कर सकती, माया नहीं खींच सकती है। वो कहे कि नहीं, ये गुरुजी ये गलत है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। तो व्यास देव को कहे कि ये गलत है, विद्वानों को माया नहीं खींच सकती है। जैमिनी कहे कि ये गलत है, इसको संशोधन किए वो जैमिनी, व्यास के शिष्य है ना जैमिनी, मीमांसा के है ना। जैमिनी ने क्या दिया है, कर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा के ये आचार्य हैं जैमिनी, व्यासदेव के शिष्य हैं, तो कहे कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, विद्वानों को माया नहीं खींच सकती है, ठीक है ना। तो जैमिनी एक जंगल में रहते थे आश्रम बना करके, अरण्य बसेरा, अरण्य में जंगल में वास करते थे आश्रम बना कर। तो एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और वर्षा रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी, तो श्रील व्यास देव माया स्त्री का रूप धारण किए, व्यास देव एक स्त्री का रूप धारण किए और स्त्री का रूप बनाकर उसी रास्ते से जा रहे थे जिधर जैमिनी का आश्रम था, और बरसात में उनके वस्त्र गीले हो गए थे, व्यास रूपी स्त्री के वस्त्र गीले हो गए थे, तो शरीर का अंग दिखाई दे रहा था। और जाते जाते जैमिनी के आश्रम में गए और शाम हो चुकी थी, तो कहे कि जाकर कहे कि जंगल में मैं रास्ता भटक गई हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, अबला हूँ, मेरी मुझे शरण दीजिए, और रात्रि हो गई है, शाम हो गई है, मैं कहाँ जाऊँगी और वर्षा भी हो रही है। तो जैमिनी कहे कि नहीं, यहाँ स्त्रियों को निवास करना वर्जित है, यहाँ केवल ब्रह्मचारी आश्रम है और सन्यासी लोग रहते हैं, स्त्री के लिए यहाँ प्रवेश वर्जित है, बहुत जगह होता है वहाँ स्त्रियों के लिए प्रवेश निषिद्ध होता है। तो उस अबला स्त्री ने कहा कि देखिए मैं जंगल में कहाँ जाऊंगी, आप मुझे शरण दीजिए, शरणार्थी को कोई अगर आपके शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो वो भी दोष लगता है। कोई मान लीजिए रक्षा के लिए आपके पास आया है, आपके शरण में आ गया है, तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए जितना हो सके। मान लीजिए कोई बहुत प्यासा है या बहुत भूखा है, आपके शरण में आ गया कि मेरी रक्षा कीजिए, अब भूख से हमारा प्राण छूटने वाला है, तो क्या करना चाहिए? उसको यथाजोग भोजन कराना चाहिए, प्यासा है तो जल पिलाना चाहिए, बहुत थका है तो उसको विश्राम करने के लिए जगह देना चाहिए। उसी तरह कोई विषम परिस्थिति में फंस गया है, संकट में, और आपके पास सहायता के लिए आता है, आप सहायता कर सकते हैं, सहायता करने के उपयुक्त हैं, तो सहायता करनी चाहिए। तो जैमिनी विचार किए कि भाई वास्तव में एक स्त्री है और वो भी शाम हो गया, वो भी जंगल है और वर्षा हो रही है, कहाँ जाएगी? तो यहाँ पर तो यही कहता कि इस परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो जैमिनी आश्रम के कुछ दूरी पर एक पर्ण कुटी था, ठीक है वहाँ पर आप रात्रि विश्राम करो, और कोई भी रात्रि में कहे तो दरवाजा मत खोलने का निर्देश दिए कि कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, स्त्रियों को सुरक्षा की जरूरत है, स्त्री को, वृद्ध को और बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखा जाता है, स्त्री को कभी भी ऐसे अकेली नहीं जानी चाहिए कहीं भी, और जाए भी तो अपने मतलब पति के साथ या पुत्र के साथ या बाल्यपन में माता पिता के सुरक्षा में, स्त्रियों को हमेशा सुरक्षा जो है जरूरी है, स्वतंत्रता जो है नहीं, स्त्री को अकेले कहीं नहीं जाना, यात्रा में नहीं जाना चाहिए, पुरुष जा सकते हैं। सीता को अकेली पाकर रावण जो है ले गया हरण करके, अगर सीता की सुरक्षा में लक्ष्मण रहते तो रावण नहीं ले जाता, तो आज भी स्त्री कहीं अगर अकेली जा रही तो कोई भी उसको छेड़ सकता है, कोई भी उसको दूषित कर सकता है, इसलिए स्त्रियों को हमेशा सुरक्षा जो है, बल्कि स्त्रियों को हमेशा पर्दा में रहना चाहिए, पहले से हमेशा घूंघट रखती थी, आज ही ब्रज में बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी यहाँ तक घूंघट रखती हैं, बहुत शरीर को अच्छे तरह से स्त्रियां आज भी गांव में है, बहुत कपड़ा से लोग अपने शरीर को ढक के रखते हैं, पर्दा, ये भी एक सुरक्षा है। आजकल बहुत मतलब मॉडर्नाइज हो रहा है, लोग कपड़ा पहनते ही नहीं लोग ब्रह्मचारी की तरह कौपिन पहन लेते हैं कौपिन और एक थोड़ा सी इधर बस स्त्रियां भी पहन, बहुत सारे जो फिल्मों में जो विज्ञापन देने वाली जो लड़कियां हैं एडवर्टाइजमेंट, तो उनका ड्रेस देखिए लगता है कि कुश्ती करने के लिए पहलवान जैसे दंगल में जाते हैं ना कौपिन में, वैसे लगता है। तो वस्त्र जो है ये भी एक सुरक्षा करता है वस्त्र, इसलिए वस्त्र अच्छा से पहनना चाहिए। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से वस्त्र जो है हमेशा अच्छा से पहनना चाहिए। तो जैमिनी इस तरह से सुरक्षा के दृष्टि से कहे कि आप दरवाजा किसी कोई भी कहे तो दरवाजा मत खोलना। तो रात्रि में जैमिनी को, जैमिनी के अंदर मन में कुछ आकर्षण पैदा होने लगा, तो रात्रि में जाकर उस व्यासदेव ही स्त्री के रूप में थे तो दरवाजा ऐसे खोटने लगे। तो स्त्री ने कहा कि आपने कहा था ना कि दरवाजा मत खोलना, कोई भी कहे दरवाजा मत खोलना। स्त्री ने दरवाजा नहीं खोली। तो जैमिनी ऊपर चढ़कर पर्ण कुटी से छत से नीचे गए। जब नीचे गए तो जैसे घूंघट किए तो व्यासदेव दाढ़ी बढ़ाए हुए व्यासदेव को देखे तो बहुत शर्मिंदा हो गए। तो ये उत्तर उनको मिल गया, इसका उत्तर जो है, जो कह रहे थे कि इसे सहमत नहीं थे कि विद्वांसम अपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को भी माया जो है खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो उनको उत्तर मिल गया और गुरु के चरण में गिर गए, कह कि आपने सही लिखा है, अब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया है पहले केवल सैद्धांतिक ज्ञान था, लेकिन अब प्रैक्टिकल मुझे हो गया कि वास्तव में इंद्रियों का जो विषय है बहुत बलवान है, विद्वानों को भी विद्वांसम अपि कर्षति, पानी पानी हो गए, मान लिए बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। जैमिनी पहले बहुत तर्क कर रहे थे व्यासदेव से, बोले नहीं विद्वानों को माया कैसे कर सकती, कैसे खींच सकती है, अब तो खींच ली तो समझ गए। इसीलिए सावधानी किया गया है कि मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्त आसनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर सकती। जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतया कोई अपनी माता बहन या पुत्री के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो आकृष्ट हो सकता है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जा सकता है यदि कोई सभ्य जीवन में समुन्नत नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं किया है, काफी उन्नति नहीं प्राप्त किया है, तो आकृष्ट हो सकता है, या बहुत आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत ऊंचा पद पर चला गया है, बहुत प्रगति कर ले तो भी वहां संभावना है दुर्घटना होने की, हमेशा दुर्घटना होने की संभावना है, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यह श्लोक जो है हमेशा अलर्ट करता है कि अलर्ट रहिए कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्त आसनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। किंतु जैसा यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान भी चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों न हो, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की वस्तु उसकी माता बहन या पुत्री तक भी हो सकती है। अतः स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। कृष्ण प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के बाद अत्यंत कठोर नियम का पालन करते थे, बहुत सावधानी रखते थे। उनके पास कोई स्त्री प्रणाम करने के लिए भी आती थी तो नहीं जा पाते थे, प्रणाम करने के लिए भी स्त्रियां उनके पास नहीं आ पाती थी। यहां पर यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपनी गुरु पत्नी, ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरु पत्नी को भी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मचारी अगर है तो गुरु पत्नी, प्राय वैदिक काल में गृहस्थ गुरु होते थे, ज्यादातर गृहस्थ गुरु ही होते थे, तो संदीपनी मुनि महर्षि धाम में, बर्तंतु मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, सब गृहस्थ ही गुरु होते थे। ज्यादा अधिकांश देखिए गृहस्थ गुरु हुए हैं। कृष्ण के गुरु गृहस्थ ही थे। गुरु पत्नी के साथ कृष्ण का कैसा व्यवहार था? महर्षि धोम में भी गृहस्थ ही थे, द्रोणाचार्य गृहस्थ थे, कृपाचार्य गृहस्थ थे, और ब्रह्मचारी जो होते थे गुरु पत्नी की सेवा करते थे। गुरु पत्नी के आश्रम के लिए जल ले आना, लकड़ी ले आना, आश्रम की सफाई करना, गोचारण करना, भिक्षा मांग कर ले आना। कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्यों की सेवा भी करती, उनको स्नान कर, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको स्नान करा देना। गुरु पत्नी अपने वात्सल्य भाव से, पुत्र स्नेह जैसा। गुरु पत्नी वृद्ध हैं तो अपने पति के शिष्यों को वात्सल्य भाव से, पुत्र भाव जैसा, पुत्र जैसे अपने पुत्र की सेवा करती हैं, स्नान करा देना, वस्त्र पहना देना। क्योंकि 5 वर्ष में ही लोग गुरुकुल में जाते थे, 5 वर्ष के बच्चे ही गुरुकुल में जाते थे, तो गुरु पत्नी सेवा करती थी, बच्चों को स्नान करा देना, उनको वस्त्र पहनाना सिखाना। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए ब्रह्मचारी अगर बड़ा हो गया है और गुरु पत्नी जूती हैं तो देखना मना है। मतलब 5 वर्ष से बड़ा हो गया, जुआ अवस्था में हो गया, आ गुरु की पत्नी मत जूती है तो देखना भी मना है। गुरु पत्नी को भी यदि वह जूती हो तो देखना मना है। कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती हैं, जैसे कि अपने पुत्र से ले सकती हैं। पुत्र पुत्रवत और शिष्यवत, पुत्र शिष्य पुत्र के ही समान होता है। पुत्र जो है, शिष्य जो है पुत्र के समान होता है गुरु के लिए और गुरु पत्नी के लिए। तो भी गुरु पत्नी अगर जूती है तो उनसे सेवा, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवा नहीं ले सकते हैं, वो देखना भी वर्जित। बर्तंतु मुनि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे, महर्षि धम्म के आश्रम में बहुत शिष्य रहते थे, जैसे अरुणी भी थे। तो जब वो लोग 5 वर्ष में गुरु आश्रम में गए तो गुरु माता सेवा करती थी। कृष्ण बलराम भी जब अंतिकापुरी गुरु आश्रम में गए तो गुरु माँ उनकी सेवा करती थी, उनके लिए खाने का भोजन बना कर देना, उनको समय पर स्नान करा देना। गुरु माँ जो है अपने पति के शिष्यों को वात्सल्य पुत्र स्नेह जैसा भाव से सेवा करती थी। से पुत्र के प्रति जो वात्सल्य होता है वैसे अपने पति के शिष्यों के प्रति गुरु माता का ये भाव था, इसलिए गुरु पत्नी को भी माँ कहा गया है। राज पत्नी, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, स्वमाता, धेनु, धरा, ये माताएं हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं तात्पर्य में, गुरु पत्नी को भी अगर ज्योति हो तो देखना भी नहीं चाहिए, सावधानी किया गया, सावधान, ये चेतावनी है कि सावधानी रहना चाहिए। तो सावधानी नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ये बहुत अच्छा श्लोक है, विशेष करके ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए बहुत अच्छा गाइड है, ये गाइडलाइन है कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपिकर्षति। विद्वानों को भी पछाड़ देती है, इंद्रियों का विषय इतना आकर्षण है उसमें, इतना उसमें खींचने की शक्ति है इंद्रियों को, खींच लेती हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बहवः सपत्नि युगे पतिम लुलन्ति, जैसे जो इंद्रियों के विषय के आकृष्ट हो जाते हैं तो वैसे ही है जैसे बहवः सपत्न, मान लीजिए कि पति के बहुत पत्नियां हों, किसी व्यक्ति को बहुत पत्नियां हों, तो कोई इधर खींचती है कोई उधर खींचती है। बहवः सपत्न, बहु पत्नी वाला, सपत्न माने पत्नी, बहवः माने बहुत, किसी व्यक्ति की बहुत स्त्रियां हैं तो कोई इधर खींचती है कोई उधर खींचती है कोई इधर खींचती, उसी तरह इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर खींचती हैं। बहवः सपत्नि गेहपति, गेहपति लुलंती, लुलंती मन उनको लोल देती हैं। ये लोग बोलते हैं कोई गुस्सा होता है तो भोजपुरी में बोलते हैं लोल देंगे आपको, मैंने बहुत मार मारेंगे, लुलंती, जैसे कपड़े को वॉशिंग मशीन में कर दिया जाता है वैसे लुलंती। बहवः सपत्न, इंद्रियों का विषय इतना ये है या इंद्रियां अपने विषय की ओर ऐसे आकृष्ट होती हैं जैसे बहवः सपत्न गेहपतिम लुलंती। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट नहीं? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, टाइगोर प्रेमानंदे।